हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अबीर ने ज़ोया को एक अनजान जगह पर कैद कर रखा था। इसका कारण अबीर के साथ ही पता चलेगा। अबीर ने अरमान और अरहम को ये बात बता दी थी कि ज़ोया उस दिन से अबीर राठौर के बंगले में नहीं लौटी थी जिस दिन उसने अरहम पर हमला किया था। अबीर बहुत परेशान होकर अपने आदमियों से कह रहा था, जल्द से जल्द ज़ोया को ढूंढकर लेकर आओ। अरमान और अरहम को यकीन हो गया था कि ज़ोया के बारे में अबीर राठौर को कुछ नहीं पता है। तभी हम देखते हैं कि अबीर अपने प्राइवेट जेट से एक अनजान जगह पर जाता है। उसने अपने बड़े जेट को एक बड़े बंगले के ऊपर लैंड किया और वहां जल्दी ही एक कमरे में उसे ज़ोया लिख गई। ज़ोया को देखकर अबीर उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे कुछ देर मोहब्बत से देखा। तभी अचानक ज़ोया, जिसके हाथ में इंजेक्शन था, उससे अबीर पर हमला कर देती है और उस इंजेक्शन की सुई सीधा अबीर के सीने में जा चुभती है, जिसकी वजह से उसे खून निकलना शुरू हो जाता है। ज़ोया अबीर को धक्का देकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी अचानक अबीर ज़ोया के पीछे आ खड़ा हुआ था। ज़ोया अबीर को देखकर पीछे हटने लगी थी और उसे एहसास ही नहीं रहा था कि उसके पीछे सीढ़ियां हैं। इससे पहले कि ज़ोया गिरती, अबीर उसे बचा लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ले आता है। ज़ोया डरी सहमी सी अबीर को देख रही थी। ज़ोया को जब से होश आया था तब से उस अनजान जगह को देखकर उसे वहशत सी होने लगी थी, क्योंकि अबीर ने ज़ोया को कुछ नहीं बताया था कि वो उसे यहाँ क्यों ले आया था। ज़ोया को लगा था कि जैसे पहले उसे अगवा किया गया था और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई थीं, तब से उसके मन में जो डर बैठा था वो अभी तक नहीं निकला था। तब अबीर ने किसी को कॉल किया और तभी 5-6 औरतें वहां आ गईं। अपने कमरे में औरतों को देखकर ज़ोया को कुछ बेहतर सा लगने लगा था। तभी एक औरत ने अबीर के सीने से निकलते हुए खून को देखा तो वो हैरान रह गई और बोली, अबीर सर, आपको चोट लगी है, प्लीज अपनी जैकेट उतारिए, हम अभी ट्रीटमेंट कर देते हैं। तब अबीर ने उसे मना कर दिया और बोला, नहीं, ये मेरे यार के दिए हुए जख्म हैं, मैं इन्हें नहीं भरने दूंगा। ऐसा कहकर अबीर ज़ोया पर एक नज़र डालता हुआ वहां से निकल गया। ज़ोया अबीर के जाने के बाद उन लेडीज से बोलने लगी, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, मेरी मदद कीजिए, इस आदमी ने मुझे अगवा कर रखा है। तब उनमें से एक औरत आगे आई। ये औरत और कोई नहीं बल्कि वो औरत थी जो अमेरिकी अस्पताल में ज़ोया का इलाज कर रही थी और जिसने काफी देर तक अकेले में अबीर से कुछ बातें की थीं। ज़ोया ने उस डॉक्टर को देखते ही पहचान लिया और बोली, आप तो डॉक्टर हैं ना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब वो डॉक्टर ज़ोया से बड़े ही प्यार से बोली, मिसेस अबीर राठौर, रिलैक्स प्लीज, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको अबीर राठौर जी ने किडनैप कर रखा है? कितनी गलत फहमी पाल रखी है आपने मिसेस अबीर राठौर। जैसे ही डॉक्टर ने ज़ोया को ये कहा, वो उस डॉक्टर को घूर कर रह गई। तभी वो डॉक्टर आगे बोली, आप जानती हैं मिसेस राठौर, आपके हस्बैंड ने आपको ठीक रखने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। रियली, अपनी बीवी को इतना प्यार करने वाला हस्बैंड हमने आज तक पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा है। ज़ोया की आंखें हैरानी से बड़ी होती चली गईं। तब ज़ोया खुद को संभालते हुए बोली, आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? एक तो उस अबीर राठौर ने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है, ऊपर से आप उसकी तारीफों के पुल बांध रही हैं। तब वो डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं मिसेस राठौर, हम यहाँ आपके हस्बैंड की कोई झूठी तारीफों के पुल नहीं बांध रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। रुकिए, मैं आपको समझाती हूँ। लास्ट टाइम जब आपके हस्बैंड आपको लेकर हमारे अस्पताल में आए थे, तब हमने वहाँ पर आपके कुछ टेस्ट किए थे और उन टेस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी कोख आपके बच्चे का बोझ नहीं संभाल सकती है, क्योंकि ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशन बनाने की वजह से आपकी कोख काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से हम लोगों को आपके बच्चे को इसी महीने यानी 7वें महीने में ही पैदा कराना होगा। क्या? या? ज़ोया ने जैसे ही ये सुना, उसका शौक के मारे बुरा हाल था। वो डॉक्टर यहीं पर नहीं रुकी। तब उस डॉक्टर ने आगे कहना शुरू किया, जब हमने ये सारी बातें आपके हस्बैंड को बताई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और फिर जब हमने उन्हें इस अस्पताल के बारे में बताया जिस अस्पताल में आप अभी हो। क्या? या? ये ज़ोया के लिए दूसरा शौक था। तब ज़ोया अटकते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं? इस वक्त जहाँ मैं हूँ वो क्या एक हॉस्पिटल है? तब वो डॉक्टर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी हाँ, आपके पति मेरे कहने पर ही आपको स्विट्जरलैंड के एक टॉप अस्पताल में लेकर आए हैं, जहाँ आपको 7th मंथ का बेबी डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आपके पति अगले ही दिन बिना देरी किए यहाँ ले आए। तब ज़ोया बोली, ये आप क्या कह रही हैं? ये अस्पताल आपको कहाँ से लग रहा है? और अगर ये अस्पताल है तो यहाँ पर तो एक भी मरीज नहीं है और ना ही कोई स्टाफ। तब वो डॉक्टर नीचा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, वो ऐसा इसलिए मिसेज राठौर क्योंकि आपके पति ने आपके कम्फर्ट के लिए अस्पताल का ये पूरा फ्लोर आपके नाम पर खरीद लिया है। क्या? या ये ज़ोया के लिए तीसरा शौक था। ज़ोया को हैरान देखकर वो डॉक्टर मुस्कुराने लगी। तब वो डॉक्टर आगे बोली, हम जो भी कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं मिसेज राठौर, और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने हस्बैंड पर यकीन क्यों नहीं कर रही हैं। तब ज़ोया डॉक्टर की बात का जवाब ना देकर इधर उधर देखने लगी। तभी ज़ोया को कुछ याद आया और वो बोली, डॉक्टर, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? मुझे अपने भाई से एक बार बात करनी है। तब डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लगता है मिसेज राठौर आपको कुछ भी नहीं पता है। तब ज़ोया डॉक्टर की ओर सवालिया नज़रों से देखने लगी और बोली, मिसेज राठौर, क्या आपने अपने इस कमरे को अच्छे से चेक नहीं किया है क्या? तब ज़ोया बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? तब डॉक्टर ने कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम, आपके हस्बैंड ने आपके लिए ऑलरेडी आपके लेफ्ट हैंड साइड डोर में आपके लिए उसी दिन फ़ोन, लैपटॉप, टैब, जो भी आपको यूज़ करना हो वहाँ सब कुछ रखा हुआ है। ये सुनते ही ज़ोया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। तभी वो डॉक्टर बोली, हाँ मिसेज राठौर, हम बातों बातों में भूल ही गए हैं कि हम यहाँ आपका रूटीन चेकअप करने के लिए आए थे, आप प्लीज़ बस हमें अपने 5 मिनट्स दे दीजिए। ज़ोया ने हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर उसका चेकअप करने लगी। जल्दी ही ज़ोया को अच्छी तरह से चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसे कहा, देखिए मिसेज राठौर, वैसे तो आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप सही ढंग से कुछ खा पी नहीं रही हैं जो आपके और आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। अभी तो मैं आपको कुछ मल्टीविटामिन्स रेकमेंड कर रही हूँ, आपको सुबह शाम 2 बार दूध के साथ ये टैबलेट लेनी होगी। जैसे ही आपकी सेहत हमें 3 दिन में बिल्कुल ठीक लगती है तो हम ठीक 1 वीक के बाद आपका बेबी डिलीवर कराने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर ज़ोया ने एक गहरी सांस ली और जल्दी ही वो डॉक्टर वहाँ से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद ज़ोया ने अपने लेफ्ट हैंड साइड के डोर ओपन किए तो वो वाकई हैरान रह गई, क्योंकि वाकई वहाँ पर फोन, लैपटॉप और टैब वगैरह पड़े हुए थे। तभी ज़ोया ने उनमें से एक फोन उठा लिया और अक्रम को कॉल करने लगी, और ज़ोया ये देखकर चौंक गई कि अक्रम का नंबर पहले से ही उस फोन में सेफ था। जल्दी ही अक्रम को रिंग जाने लगी और ज़ोया अक्रम के फोन उठाने का इंतजार करने लगी।
जल्दी ही अक्रम ने फोन उठाया और हेलो बोलने की जगह वो बोला, ज़ोया कैसी हो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? इतने दिन क्यों लगा दिए अपने इस भाई को फोन करने में? अक्रम के मुंह से ये बात सुनकर ज़ोया चौंक गई और बोली, आपको कैसे पता चला कि ये मेरा कॉल है? तब अक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा तुम्हारे शौहर अबीर जी ने बहुत पहले ही तुम्हारा नंबर मुझे दे दिया था। तब ज़ोया बोली, भाई ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ हूँ और आप दोनों मेरे पास क्यों नहीं हैं? तब अक्रम बोला, बेटा तुम्हारा इस वक्त यहाँ होना खतरे से खाली नहीं है। जैसे ही अबीर जी को तुम पर मंडराए खतरे के बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हें सब खतरों से बचाने का फैसला किया। तुम नहीं जानती, कल ही अरमान ठाकुर और अरहम ठाकुर यहाँ आधम के थे। अबीर जी ने उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि अगर तुम अरमान के हाथ लग जाती तो क्या से क्या हो जाता। तुम अच्छी तरह से जानती हो अरमान तुम्हारे लिए कितना पागल है। अगर अरमान को एक बार तुम दिख जाती तो वो कुछ भी करके अबीर जी की जान ले लेता और उसके बाद वो तुम्हें ले जाता। और अभी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम अरमान या अरहम का सामना कर सको, इसलिए अबीर जी ने तुम्हें सबसे छुपाकर रखने का फैसला किया है जब तक कि तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती और जब तक कि तुम अरमान और अरहम का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। ज़ोया, एक बात बोलूं बेटा, अबीर जी एक बहुत अच्छे इंसान है, वो वाकई तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, वरना आज के जमाने में तो लोग केवल नाम का रिश्ता ही निभाते हैं, लेकिन अबीर साहब ने तो तुम्हारे और अपने रिश्ते को एक नाम दिया है, और देखो आज तुम्हारी खातिर वो इंसान खुद मरने और किसी को भी मारने के लिए तैयार है।